खबरों से भरे न्यूज 18 के इस पॉडकास्ट में मैं अनुराग अन्वेषी आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, आज के इस न्यूज पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे बिहार में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह की, दिल्ली में कोरोना का हाल भी हम जानेंगे, उससे लड़ने के उपायों की भी चर्चा करेंगे। खबर के अंत में आपको बतलाएंगे उस पुलिस अधिकारी का हाल जो मानसिक संतुलन खोने के बाद पिछले 10 साल से मारे मारे फिर रहे थे। फिलहाल चलिए शुरू करें पॉडकास्ट के आज का सफर। दिल्ली में रोजाना कोरोना के 7,000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या दिल्ली में फिर से लॉकडाउन लगाया जा सकता है, क्या बाजार बंद करने का कदम फिर से उठाया जा सकता है। इन सवालों पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि जब पहले लॉकडाउन किया गया था तो वो एक लर्निंग एक्सरसाइज थी। उस लॉकडाउन से यह सीख मिली कि लॉकडाउन से जो भी फायदा लेना है वह मास्क से भी लिया जा सकता है। इसकी वजह वैज्ञानिक है। सबसे कम पॉजिटिविटी हॉस्पिटल के स्टाफ को है, क्योंकि वे प्रोटेक्शन में रहते हैं, इसलिए लॉकडाउन लगाने का कोई चांस नहीं है। हम सबको प्रोटेक्शन में रहना होगा। इस बीच कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए खबर आई कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय राजधानी में महामारी के खिलाफ लड़ाई को तेज करने के लिए मंथन किया और उनके 11 दिशा निर्देशों पर सही से अमल करने के लिए दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में कई बैठकें की गईं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस समय सबसे ज़्यादा परेशानी आईसीयू बेड को लेकर हो रही है। कोविड बेड अभी ठीक संख्या में हैं, लेकिन आईसीयू बेड की काफ़ी ज़रूरत है। केंद्र सरकार ने आज आश्वासन दिया है कि अगले 2 दिनों में डीआरडीओ सेंटर में 500 बेड उपलब्ध करा दिए जाएंगे और अगले कुछ दिनों में 250 और बेड दिए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा,
केंद्र सरकार ने आज एश्योरेंस दिया है कि वो जो डीआरडीओ का सेंटर है वहाँ पे अगले 2 दिन में 500 आईसीयू बेड्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे और उसके अगले कुछ दिन में 250 और, तो लगभग 750 आईसीयू बेड्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे।
आपको बता दें कि कोविड-19 से निपटने में दिल्ली के स्वास्थ्य कर्मियों की मदद करने के लिए अर्धसैनिक बलों के कम से कम 75 डॉक्टर और 250 चिकित्सा कर्मी यहाँ आ रहे हैं। ये सभी असम, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान आदि जगहों से आएंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के घाटमपुर क्षेत्र में दीपावली की रात काला जादू और तंत्र मंत्र करने के लिए 6 साल की दलित बच्ची की हत्या से पहले उसके साथ गैंगरेप भी किया गया था। यह जानकारी अपर पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश श्रीवास्तव ने दी। उन्होंने बताया कि इस वारदात में पकड़े गए अंकुल कुरिल और बीरेन ने स्वीकार किया है कि उन्होंने बच्ची से गैंगरेप करने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद बच्ची के दोनों फेफड़े निकालकर मुख्य आरोपी पुरुषोत्तम को दे दिए थे। पुरुषोत्तम को काला जादू करने के लिए इन अंगों की ज़रूरत थी। आपको बता दें कि इसके बाद पुरुषोत्तम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भंवरलाल मेघवाल का कल निधन हो गया। वे 10 अप्रैल से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती थे। भंवरलाल मेघवाल के निधन पर राजस्थान सरकार ने राजकीय शोक की घोषणा की है। बीते हफ्ते बुधवार को देर रात ब्रेन स्ट्रोक के बाद मेघवाल को मेदांता में भर्ती कराया गया था। भंवरलाल मेघवाल के निधन पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री समेत देश के कई बड़े नेताओं ने शोक जताया है। ये खबरें आप न्यूज़ 18 के पॉडकास्ट पर सुन रहे हैं। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindi.news18.com पर जाएं। महाराष्ट्र में कोविड-19 के मद्देनज़र करीब 8 महीने से बंद धार्मिक स्थल सोमवार को फिर से खोल दिए गए। सोलापुर के पंढरपुर में भगवान विट्ठल के मंदिर, शिरडी में साईं बाबा के मंदिर, उस्मानाबाद में देवी तुलजा भवानी के मंदिर और मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धि विनायक मंदिर में दर्शन के लिए भक्त सुबह सुबह पहुंच गए। यहां शाहजी अली दरगाह में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु नजर आए। सिद्धि विनायक मंदिर के अध्यक्ष आदेश बांदेकर ने बताया कि मंदिर में प्रतिदिन 1,000 श्रद्धालुओं के दर्शन करने की अनुमति होगी और उन्हें भी चरणबद्ध तरीके से अलग अलग समय पर भीतर जाने दिया जाएगा। मोबाइल फोन ऐप से भी दर्शन के लिए बुकिंग की जा सकती है। बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में एक बार फिर से एनडीए की सरकार ने शपथ ले ली है। नीतीश कुमार ने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार की नई सरकार में 2 डिप्टी सीएम होंगे। शपथ लेने वालों में जेडीयू से 5, भाजपा से 7 और हम वीआईपी से 1-1 मंत्री शामिल हैं। बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद आज यानी मंगलवार को कैबिनेट की पहली बैठक भी होगी। दिन के 11 बजे से होने वाली इस बैठक में ही मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से पटना साहिब से जीत कराए नंदकिशोर यादव इस बार विधानसभा अध्यक्ष का पद संभालेंगे। महापर्व छठ को लेकर झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी ताज़ा गाइडलाइंस के तहत राज्य भर के तमाम छठ घाटों पर पूजा की मनाही की गई है। श्रद्धालुओं से घर में ही पूजा करने की अपील की गई है। सरकार की इस गाइडलाइन के बाद इसमें संशोधन को लेकर आवाज़ उठने लगी है। राजधानी के तमाम छठ घाटों के आसपास बसे स्थानीय लोगों, राजनीतिक दल, पूजा समितियों समेत कई संस्थाओं ने राज्य सरकार से गाइडलाइन में संशोधन की अपील की है। यहाँ तक कि हेमंत सरकार में शामिल कांग्रेस ने भी छठ को लेकर जारी गाइडलाइंस पर सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी के नेताओं ने राजधानी के बटन तालाब में उतरकर गाइडलाइंस का विरोध किया। इस पॉडकास्ट के आखिरी खबर में चलिए आपको लिए चलते हैं ग्वालियर। इस खबर की शुरुआत हम फ्लैशबैक से करेंगे। आपको याद दिला दूं कि वह 10 नवंबर की रात थी। नियति ने एक तरफ मध्य प्रदेश में सरकार बनाने पर मोहर लगा दी थी तो दूसरी तरफ वह एक बिछड़े और बिखरे पुलिस अफसर को उसके परिवार से मिला देने की ठान ली थी। मतगणना की ड्यूटी करके DSP विजय सिंह और रत्नेश तोमर ग्वालियर में अपने घर लौट रहे थे। वे झांसी रोड से निकल रहे थे, जैसे ही दोनों बंधन वाटिका की फुटपाथ से होकर गुजरे तो सड़क किनारे एक अधेड़ उम्र के भिखारी को ठंड से ठिठुरता देखा। गाड़ी रोककर दोनों अफसर भिखारी के पास गए और मदद की कोशिश की। रत्नेश ने अपने जूते और DSP विजय सिंह भदौरिया ने अपनी जैकेट उसे दे दी। इसके बाद दोनों ने उस भिखारी से बातचीत शुरू की। तभी भिखारी ने उन दोनों का नाम लेकर पुकारा। किसी फिल्मी कहानी की तरह पल भर में यह सच सामने आया कि भिखारी की हालत में पहुंच चुका यह शख्स दरअसल उन्हीं के बीच का पुलिस अफसर मनीष मिश्रा है। आपको यह जानकर सुख मिलेगा कि अब पूर्व पुलिस अफसर मनीष मिश्रा ठीक हो रहे हैं। उन्हें फिलहाल स्वर्ग सदन आश्रम में रखा गया है और यहीं उनकी देखभाल की जा रही है। जब मनीष के यहाँ होने की जानकारी उनके अन्य दोस्तों को लगी तो उनके बैच के 5 पुलिस अफसर उनसे मिलने आश्रम पहुँच गए। मनीष मिश्रा ने सबको पहचान लिया। वे सभी से खुलकर और खुश होकर मिले। मनीष ने अपने एक और बैचमेट शिव सिंह यादव के बारे में पूछा। शिव सिंह अब मेहगांव में TI हैं। साथियों ने फौरन वीडियो कॉल के जरिए शिव सिंह से मनीष की बात करवाई। बात करके मनीष पुरानी यादों में खो गए। शिव सिंह से उनके परिवार और भाई के बारे में बातचीत की, उन सब का हाल जाना। ये खबरें आप News18 के पॉडकास्ट में सुन रहे हैं। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए hindi.news18.com पर जाएं। आज के न्यूज बुलेटिन में इतना ही। नई खबरों और नए अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अनुराग अन्वेषी को दे विदा। नमस्कार दोस्तों।